તારીખ 4/1/1992 શ્રી દ્રવદ્રષ્ટિ પ્રકાશના બોલ નંબર 139-143 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 77.
गुरुदेव श्री की स्वयं गर्दना ऐसी है कि दूसरे को निर्भय बना देती है। वहीं जंगल में के सिंह की गर्दना तो दूसरे को भयाकुल बनाती है। दोनों में बहुत फर्क है। गुरुदेव की वाणी को सिंह गर्दना का उपमा दी है। सिंह गर्जना की तो जो है वो व्याकुल करके भगवान बना देती है। सिंह की गर्जना तो लोगों को दूसरे प्राणी को भय का कारण होती है। लेकिन ये सिंह गर्जना ऐसी नहीं है। यह सिंह गर्जना तो ऐसी है कि भाई छुड़ा दे गुरुदेव के मान में सिंह गर्जना रूप है, लेकिन गर्जना में यही कहना है कि कोई विशिष्ट प्रकार की गर्जना है, ऐसा कहना है। गुरुदेव की वाणी में कोई विशिष्ट प्रकार है, ऐसा ही कहना है। जंगल में जैसे सिंह गर्जना, सिंह जंगल का राजा होने से उसका उसकी गर्जना से सिंह गर्जना कहते हैं। ताकत सिंह गर्जना में मां ताकत है, मतलब ऐसे गुरुदेव के बारे में बहुत शक्ति है, ऐसा कहना है। शक्ति बताने के बाद लेकिन भाई के साथ मेल नहीं खाता है, प्रतिपक्ष का मेल खाता है। वो भय कराती है, वो भय निकाल देती है। आवाज भी दुर्मिला दोनों प्रकार की है। आवाज बुलंद भी था और वाणी में ऐसा निमित्तत्व था कि सुनते हो किसी को आत्मज्ञान हो जाए, सुनने से किसी को आत्मज्ञान हो जाए। ऐसा ही उसमें अहंकार आए बिना नहीं रहता। अनुभव है वो भाषा में, उसकी झलक आए बिना नहीं रहती। पहले के जमाने में वो चांदी का रुपया था ना, तो रुपया चांदी का है या उसमें कोई मिलावट है या चांदी का नहीं है, शीशे का है, इसका पता कैसा चले? तो उसको खखड़ा गया तब। तो जब नोट नहीं थी और केवल सिक्का था चांदी का, तो ऐसा खखड़ा के लेते थे। जैसे तो किसने 1000 रुपया दे दिया, तो 1000 रुपया आपका जमा करो मेरे हिसाब में, मेरे खाते में। तो एक आदमी को बैठा दे कि भाई तुम खखड़ा दे जाओ, फिर बुझा लगे उसको एक बटन निकाल देगा। आवाज से सच्चा जुट्ठा की परीक्षा। जैसे कोई प्रश्न पूछता है कि तुमने ये काम किया था कि नहीं किया था, तुम बोले थे कि नहीं बोले थे, तो जवाब तो कोई जुट्ठा भी दे सकता है। बहुत बोलता है ना, गुनेगार को पूछते हैं और फिर वो जवाब भी देता है, तो जज वो जवाब को अनुमोद नहीं करता, सिर्फ उसकी चेष्टा को अनुमोद करता है। जवाब दिया मानने लायक है कि नहीं है, जवाब दिया उसी मानता नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? जवाब तो ऐसा दिया लेकिन उसमें समझे क्या, ये सही है सही नहीं दिखा है ऐसा। ऐसे ये सिंह गर्जना तो सिंह गर्जना है लेकिन एक भगवान करती है, एक निर्भय बना देती है।
गुरुदेव की वाणी सिंह गर्जना है, ये उन्होंने अपने अनुभव से इसको
सिद्ध कर दिया, अनुभव करके सिद्ध कर दिया कि वाणी में वचन तो लिखा है आपकी वाणी में इसका स्पर्श होते ही विष्णु की उत्तम व उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई। थोड़ा यह तो कर लूं, यह तो जान लूं, तुम तो रूप यह सब अभिप्राय अटकने का रास्ता है, ऐसा अभिप्राय है वो अटकने का। पहले मैं सुन लू, पहले मैं जान लू, पहले कुछ ऐसा पूजा भक्ति कर लू, बाद में मेरा मैं पुरुषार्थ शुरू करूंगा। ये पहले पहले वाला हमेशा पहला रहता है, बाद वाला हमेशा बात यह करने का रास्ता। अपने असंख्य प्रदेश में प्रसर कर, देखो क्या अपन अपने असंख्य प्रदेश में प्रसर कर, पूरे का पूरा व्यापक होकर, प्रसन्न का यही हुआ कि व्यापक होकर तन्मय रहो ना, अपने असंख्य प्रदेश में व्याप्त व्यापक भाव में अपनत्व का भाव प्रसार करके तन्मय बने रहो, सुख शांति बढ़ती जाएगी और विकल्प आदि टूटते जाएंगे। बस ये पूरा संक्षेप हो गया सारी बात का। तो पहले ये कर लू, पहले वो कर लू, उसमें क्या रखा है? अपनी शांति प्रगटे, यही तो अपना प्रयोजन है, उसको हम पीछे क्या रखें? हमारे प्रयोजन को मुख्य करें या हमारे प्रयोजन को कौन रखे? ये बात ये अपने कल प्रश्न चला था, स्वार्थ इसमें प्रसन्न की बात आई ना कि ड्रेन में अपना अपना प्रसर जाता है, क्या ड्रेन में बैठने से और द्रव में बैठकर द्रव को देखना है तो द्रव में अपनापन प्रसर जाता है। प्रसर जाता माने क्या? कि प्रसर जाता मैंने व्याप्त व्यापक होकर के तन्मय होना, व्याप्त व्यापक भाव से तन्मय पना होना, उसी को प्रसर जाना ऐसा कहने में आता है। अन्य मत में ऐसा आता है कि भगवान के प्रति इतनी भक्ति करते हैं, इसके भक्त वहां उतनी भक्ति करते हैं कि भगवान में वो तन्मय हो जाते हैं, क्या कहते हैं?
तन्मय हो जाते हैं।
मीरा ने श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि वो श्री कृष्ण में लीन हो जाती थी, क्या बोलते हैं? ऐसे बहुत से भक्त हैं बंगाल में हुए, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए ना, चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद वगैरह क्या करते थे? रामकृष्ण परमहंस काली माता के मंदिर में जाकर के लीन हो जाते थे माता में, क्या? दूसरे पदार्थ में दूसरा पदार्थ व्याप्त व्यापक हो सकता नहीं, कैसे लीन होगा? लीन कैसे होगा? लीन हो सकता
नहीं,
तो व्यापक भाव का अभाव में लिख कैसे? ऐसी बात है, ऐसा तो खाने में एकाग्र हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज देखने की आए तो देखने में एकाग्र हो जाते हैं, कोई बुलावे तो सुने भी नहीं, खाने में बस पर तो कोई बात करे तो सुने नहीं, देखने में और लीन हो जाए तो फिर सुने नहीं। एक हृदय रस आने से एकाग्रता होती है, लेकिन व्यापक भाव से अन्य पदार्थ में आत्मा के व्यापक भाव से एकाग्रता नहीं होती, और अपने आत्मा में जब एकाग्रता होती है तो व्यापक भाव से होती है। वास्तविक एकाग्रता है, वास्तविकता है। जैसे कोई विकल्प में समय होता है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, अनंत विदर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय मंडित हूँ, लेकिन विकल्प में, आत्मा के विकल्प में एकाग्र होना अलग बात है, और आत्मा के प्रदेश में तन्मय होना हो अलग बात है। ये बात है, एकाग्रता तो होती है, तन्मयता तो होती है, रस आती है तो भाव तन्मय हो जाता है, लेकिन भाव भाव पहुंच सकता नहीं है, भाव की वहां व्यापकता नहीं होती है, भाव में तन्मयता आती है लेकिन व्यापकता
नहीं होती
है। आत्मा में तो व्यापक भाव से समय का क्या निकलता है, अपने असंख्य प्रदेश में प्रसर कर सूर्य के पूरा व्यापक होकर समय हो रहा, समय रहो ना, सुख शांति बढ़ती जाएगी, विकल्प आदि
जाएगा,
आत्मा के विकल्प टूट जाएंगे, आत्मा के पहले होंगे शुरू शुरू के, मैं ऐसा हूं, लेकिन तन्मयता आत्मा में होगी तो विकल्प छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प है, मैं निर्विकल्प हूं ऐसा विकल्प, क्या
मैं निर्विकल्प
हूं
ऐसा विकल्प,
मैं निर्विकल्प हूं ऐसा विकल्प, निर्विकल्पता को साधता नहीं, निर्विकल्पता साधने में मैं निर्विकल्प हूं ऐसा विकल्प भी टूट जाता है, टूट जाता है सबका निर्विकल्प। स्वयं में कैसे एकाग्र होना, कैसे तन्मय होना, कैसे प्रसर जाना, व्यापक होना, ये विषय कर दिया है सच्चा, इसको ध्यान कहते हैं, क्या जिसको ध्यान कहते हैं, शास्त्र परिभाषा में जिसको ध्यान कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोध हो ज्ञानम, तो आप चेतावना स्वामी का सूत्र है, तो दूसरी चिंता का निरोध हो करके एक विषय में मुख्य हो रहा उसको ध्यान है, लेकिन पर पदार्थ का और पर भाव का हो रहे तो उसको आत्मध्यान कहते हैं या रोग ध्यान कहते हैं, और स्वयं में व्यापक भाव से होने से उसको समझ आए, व्यापक नहीं हुए तो विकल्प वाला ध्यान वो ध्यान
नहीं है,
ये बात पलटाया करे वो अन्य भाव है, वास्तव में वो अन्य भाव है, ज्ञान विकल्प रूप हो नहीं सकता, और विकल्प ज्ञान रूप और आत्मा रूप हो नहीं सकता, जाति भेद है, और यहां तो में प्रसर कर समय होने से द्रव और पर्याय एक जाति के हो जाते हैं, सदृश हो जाते हैं, भिन्न जाति के
नहीं
रहते,
तो हम पिता और भगवान जान ही सकते,
योग पलटा है, बड़े विकल्पण पलटा है, उपयोगपन पलटा है, लेकिन योग की जाति अपने होने से वो व्यापक भाव से तन्मयता आती है। जाति अलग होने से व्यापक भाव से तन्मयता नहीं, कोई मानस भले न सके तो नहीं कहता आपने तो भाई भरता नहीं, भरता नहीं आवे से खरा पर नहीं भरता। आपने शू કે આપણામાં એ આવે છે પણ હજી ભણતા નથી, જુદા પડી જાય છે, વિકલ્પ છે જુદો પડી
જાય છે,
અથવા પાણી પાણીમાં તો મળી જાય છે પણ પાણીને તેલ ભરતું નથી, ભલે પડવાઈ હોય તો તેલ ને પાણી જુદા દે પાણીની બાલ્દીમાં તેલ નાખે તો તેલ જુદું બી અને પાણી
જુદું,
અને તેલ ભરેલા પીપળામાં પાણી નાખે તો પણ પાણી જુદું બી અને તેલ જુદું બી કરે, તેલ ભરેલું ટૂકડું હોય એમાં 5-10 કિલો પાણી નાખી દે બાલ્દી ઉપરથી જુઓ તો તેલ જ દેખાય કેમ કે પાણીનું વજન વધારે છે, ડેન્સિટી એનું વધારે છે, તેલ હલકું છે તેલ ઉપર કરે, અને બાજુમાં તેલ નાખો તેલ ઉપર કરે તેલ નીચે ન જાય, પાણી નીચે અને પાણી તેલના ભરેલા પીપળામાં પાણી નાખો તો પાણી નીચે પી જાય તેલ ઉપર લઈ જાય, બીજી 5-10 કિલો તેલ નાખી કરી શકે છે, ઉપરથી જો સેમ્પલ કાઢે તેમનું ભરેલું કૂતરું હોય ને પડવું નાખે પડવું હોય નાખે તેને હાથમાં તેલ આવે પાણી ન આવે, કેવી રીતે જોવે કે એની નળી નાખે તે સુધી તળીએ જાય એને નાખી અને ખૂંક મારી અને ખેંચે એને જે પ્રમાણે એ ખેંચાઈ જાય, ખેંચાઈ જાય થોડું થોડેક નીચે પાણી છે કે તેમને ભાવે પાણી કદી એક વેગ થાય, વિકલ્પ ને જ્ઞાન કદી એક વેગ થાય, ભલે વિકલ્પ આત્મા નો હોય તો વિકલ્પ ને જ્ઞાન અથવા આત્મા એક એક થાય, જ્ઞાન ને આત્માની જાતિ એક છે, જ્ઞાન છે સ્થિર થાય વ્યાપક ભાવે અન્વય થાય છે, વ્યાપક ભાવે થાય જબ ભી આત્મા ને ઉપયોગ વિકાર હોતા હોય તમે એ ઉપયોગ પ્રસન્ન જાતા હે પૂરે પ્રદેશ એટલે પ્રદેશ પ્રદેશ નું જે જ્ઞાન ઓર આનંદ કા વેદન એ કારણ છે, દૂસરે લોગ એસા કહેતા કે જ્ઞાન હોતા હે તો ઇધર આનંદ આતા હે, મસ્તક મેં આનંદ આતા હે, ક્યાં બોલે આપ પૂછો કે આપકો ધ્યાન હોતા હે, હા અનુભૂતિ હોતી હે ધ્યાન મેં તો અનુભૂતિ બોલે, ક્યાં બોલે હો બોલો ભી અનુભૂતિ શબ્દ કા પ્રયોગ કરે આનંદ આતા હે, હા કૈસા આનંદ અરે કેમ બતાવે કે વચનાથી તો આનંદ આતા હે, તો અમીર વચની આનંદ અમીર વચની તો કહા આતા હે પંખી જગ્ય પે આતા હે અનુભવમાં આવતા હે તો કઈ જરૂર નથી, વાત તો બતાવો સારે પૂરા આત્મા મેં પ્રસન્ન હોકર પ્રસન્નતાને છે તન્મય હોકર આનંદ આતા, અનુભવ તો કે નહીં કલ્પના ને અનુભૂતિ કે ભી એક કલ્પના એકાગ્રતા તન્મયતા કા અચ્છા ખુલાસા હૈ, સ્પષ્ટીકરણ હૈ ઇસ વિષય મેં કલ્પના નહીં કરની હૈ, વો ભ્રમ હૈ કલ્પના હૈ વો ભ્રમ હૈ પર ભ્રમ હૈ તો ગ્રહિત મિથ્યા રહે ઉસમેં કલ્પના હોય તો
ક્રમ
ભૂલે ક્રમ ને ભૂલા રહે
सब कुछ फिर तो विख्यात होता है तो हर जगह सुनता ही है। भूख प्यास लगे तो उसको बुझाए बिना चैन नहीं पड़ता। भूख प्यास लगे तो उसको बुझाए बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसे जो विकल्प में दुख ही दुख लगे तो सुख सुर ही ले उसके बिना चैन ही न पड़े, ऐसा ही सवाल है। भूख प्यास का जैसा शरीर में वेदना होती है तो उपयोग बार बार बन जाएगा, उसको उपयोग वहां लगे ही रहेगा, चैन नहीं पड़ेगा, तो जितना काल लंबा होगा और फिर दुख हो जाएगा। ऐसे जो विकल्प में दुख ही दुख लगे तो वर्तमान चलता विकल्प में दुख लगे तो उसको उसमें चैन पड़े नहीं, विकल्प को छोड़ने के लिए प्रयास करेगा और ये छोड़ने का प्रयास जो करेगा वो रसायन का स्वभाव है। दुख लगे तो दुख को छोड़ करके सुख में आना ऐसा प्रयास होना ये स्वभाव है जी का। लोगों को भी बुद्धि में तो ये बात आई है, जरूरत है वो नई शोध की माता है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या बोले हो कि जरूरत है कि हमको प्रकाश की जरूरत पड़ी, रात में रात्रि को अंधेरा अंधेरा होता है और हमें चाहिए प्रकाश, तो हमें मिट्टी के पेड़ दिए जलाने लगे, फिर ये लाल चैन आया, अरे तो कोरिया में तेल के लिए जलाने लगे, फिर मिट्टी का तेल आया, अब इलेक्ट्रिसिटी आई, उसमें भी कई प्रकार के हवाबल लाइट आई, ऐसे लाइट आई, वो मर्क्यूरी लाइट आई, वो लाइट आई, कैसे आई कि जितनी जरूरत लगी उतना संशोधन हुआ, जरूरत लगी उतना संशोधन हुआ। ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर में बड़ी लाइट लगते हैं तो उसको दिखने में छोटी मोटी नस वो भी दिखने में आए, कहीं भी उसको नहीं सूझ पड़े ऐसा नहीं हो गए। और उधर जाते हैं ऊंचाई में दार्जिलिंग एरिया तो बीच में वो आता है बादल आते हैं, इतनी ऊंचाई है 6-7-8 हजार फीट की ऊंचाई है, तो बादल आते हैं बीच में रास्ता नहीं दिखता है, वो फॉग लाइट लगाते हैं तो धुम्मस होता है, उसमें लैंड नहीं कर सकता है, वो लाइट नहीं चलती, ये फोकस लाइट नहीं चलती, उसमें फॉग लाइट चाहिए, दूसरी जात की लाइट आती है, तो जहां जरूरत लगती है तो आप उस प्रकार के प्रकाश का शोध करते कि नहीं। अभी दुख है उसको मिटाने की जरूरत लगे तो सुख का शोध होती है, वर्तमान में दुख नहीं लगे तो सुख की खोज करने का प्रयास कोई आत्मा करने वाला बिना जरूरत कोई प्रयत्न नहीं करता, निश्चित बिना जरूरत प्रयत्न नहीं करता। इसलिए एक मुमुक्षु की पात्रता का जो बहुत से लक्षण है, मुमुक्षु की पात्रता का जो बहुत से लक्षण है उसमें ये एक अच्छा लक्षण है कि वर्तमान चलते विकल्प में दुख लगे। अगर वर्तमान चलते विकल्प में दुख लगता है तो ये अच्छा पात्र है, वर्तमान पात्र है, वो सुख को खोजेगा, सुख को ढूंढेगा और जहां तक उसको आत्म शांति और आत्म सुख नहीं मिलेगा तो चैन से बैठेगा
नहीं।
इसलिए ऐसा कहते हैं अनुभवी लोग कि मुमुक्षु की भूमिका में आत्म शांति नहीं मिले तो अजंपा हो जाना चाहिए, जंप नहीं होना, अजब पा गया था। अरे मेरी शांति मेरे पास नहीं है, कहाँ तक मुझे शांति मिलेगी, मेरे शांति में मुझे नहीं पड़ता, ऐसा हो जाना चाहिए। एकता विषय है तो पात्रता का विषय है, पदम चलिए पूछते हैं जब दृष्टि प्रकाश में पात्रता का विषय आता है कि नहीं आता है, सही नहीं आता है थोड़ा थोड़ा तो वहाँ तो उसके विराज चंद्र जी के पत्र स्वाध्याय चला सौंदर्य में तो पात्रता की बात बहुत आती है, तो फिर मनुष्य को पत्र लिखे हैं इसमें तो पात्रता की बात बहुत आती है, लेकिन दृष्टि प्रकाश में जो दृष्टि का विषय की बात बहुत आती है, पात्रता की बात नहीं आती है, आती है कम आती है पात्रता की बात। विकल्प में दुख लग जाना वो पात्रता का विषय है, चालीस में तो क्या है कि ऐसा कोई भाला पहले सुन लू पहले समझ लू पहले पढ़ लू या पूजा पक्के तो हमेशा करना है भगवान की पूजा, बिना पूजा किया मुझे कोई काम नहीं करना है तो स्वाध्याय नहीं छोड़ते, पूजा पहले कर ले कि स्वाध्याय होने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन पूजा तो पहले कर ले, तो ये सब अटकने का रास्ता है। पहले आत्मशांति का प्रयत्न करो और उस प्रयत्न का निमित्त है उसको प्रधानता स्वाध्याय देखो, पहले प्रधानता अटकता है वो पात्र नहीं है, वहां तो एकाग्रता कैसे होनी
तो बात को पात्र बोल आप नीचे लगे छाटे लगे
एक सौ इकतालीस आज यथार्थ भूमिका माना है, तो इकतालीस के लिए यथार्थ भूमिका मिली पात्रता मान तो मिली, और पात्रता को कोई यथार्थ भूमिका तो आज पास एक अर्थ माना है तो सिद्धि पात्रता में आने मैंने आ यथार्थ भूमिका द्वारा पात्रता के पास ऐसे ऐसे
जितना पत्र है
पात्रता भी है, बात आती है कई सिद्धांतों की बात आती है, कई वस्तु के स्वरूप का निरूपण आता है सत्कारकों वगैरह का, और कहीं अनुभव की भी बात आती है, मतलब अलग अलग स्तर की बहुत सी बातें आती है। इसमें कितना कितना क्लास दिया है, 27 दिया है करीब, कितना वर्ग निकल सत्ताईस वर्ग का विषय चला है। एक सौ 42 प्रश्न, विकल्प में दुख ही दुख लगे ऐसा जो आपने कहा 141 में ऊपर, तो यह तो नास्तिक पक्ष में गया, क्या मुमुक्षु ने प्रश्न क्या किया, क्या आप अस्थि का बात बताओ ना, आप तो नास्तिक की बात करते हो, पर हमको तो अस्थि चाहिए, नास्तिक से हमें क्या लेना देना है, क्या हमको तो नास्तिक का विचार नहीं करना है, हमको तो अस्थि का विचार करके अस्थि को प्राप्त कर लेनी है, पर आपने तो नास्तिक की बात किया, ऐसा प्रश्न चला है। नास्ति भी द्रव की अपेक्षा से है,
क्या जो शुद्ध अस्थि द्रव्य है उसकी अपेक्षा से वो नास्ती है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से नास्ती नहीं है। पर्याय में तो विकल्प और दुख अस्थि रूप में है, तो द्रव्य में नास्ती है तो द्रव्य की अपेक्षा से नास्तिक है। बाकी तो उस पर्याय में दुख निकल कर सुख प्रकट होता है। लेकिन भाई बाहर निकल गया लाया भाई बाहर गए बाहर गए इनको थोड़ा मस्ते नास्ती का मतलब प्रश्न आता है बहुत, इसलिए याद आए मस्ते नास्ती का बहुत प्रश्न करता है। दृष्टि प्रकाश का रस चढ़ाया ना कई लोगों को, दृष्टि प्रकाश का दृष्टि का विषय का अस्थि अस्थि को हमें अस्थि चाहिए, हमें नास्ती की बात नहीं चाहिए। अरे भाई द्रव्य दृष्टि प्रकाश का जो पिता है जनक है ना ये, तो वो तो बात करते हैं विकल्प में दुख है ऐसी बात करते हैं, वो तो करते हैं। जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ते हैं वो नास्तिक की बात विषय का उपेक्षा कर लेते हैं, और तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश जिन्होंने कहा वो तो निरूपण करते हैं, हम क्या करोगे। हमको ये लगता है कि हम तो इससे भी आगे जोर से बात करते हैं, अभी इससे आगे जाने की थोड़ी देर है, अभी तो तुम मुमुक्षुता में है, वो तो ज्ञानी थे। ऐसे तीनों को हो जाता है। तो विकल्प होवे और विकल्प में दुख है तो दुख तो लगे नहीं, कितनी अच्छी बात किया। बात करने में तो विकल्प होवे और हमने बहुत बढ़िया बात किया, बहुत जोर वाली बात किया, लेकिन जोर वाली बात करने में विकल्प था उसमें दुख था कि उसमें सुख था, तुम्हें तो उत्साह दिखता है, ऐसी बातों में उत्साह आता है तो दुख तो लगा नहीं, दुख लगा नहीं तो बात तो बात रह गई, उस बात से कोई पेट भरने वाला
नहीं है,
मेरी शांति नहीं होगी। इससे कई लोग नास्तिक की बात को पसंद नहीं करते हैं, ये तो नास्तिक की बात है, तो विकल्प में दुख लगे वो तो नास्तिक की बात है। भाई तुम खड़ा है वहां पर वो दुख लगता है कि नहीं लगता ये तो बताओ, अगर नहीं लगता है तो पात्रता में भी नहीं है, ज्ञान दशा तो है नहीं लेकिन पात्रता में भी ज्ञानियों तो सूक्ष्म विकल्प में भी दुख लगता है, देवादि प्रत्योग जाता है उसमें दुख लगता है, शुद्धात्मा का विकल्प होता है उसमें दुख लगता है, सूक्ष्म मंद विकल्प है उसमें भी दुख लगता है, ये बात है। नास्ति भी द्रव्य के अपेक्षा से है, बाकी तो उस अंश में दुख निकल कर सुख प्रकट होता है। नास्ती की नास्ती हो जाती है तो अस्थि का सुख प्रकट होता है, और ऐसा दुख लगे तभी तो द्रव्य की ओर आएगा। जब ऐसा दुख लगेगा वर्तमान अवस्था में विकल्प इसका दुख लगेगा तभी द्रव्य के अंदर अंतर्मुख होगा, इसके पहले अंतर्मुख होने का कभी बन सकता नहीं, किसी को नहीं बनता। जो भी धर्मात्मा अंतर्मुख हुए हैं वो तो विकल्प में दुख लगने से अंतर्मुख हुए हैं, जिसको विकल्प में दुख नहीं लगता है वो अज्ञानी अज्ञानी रहता है, पात्रता भी उसको नहीं है, वो ज्ञानी होने का तो सवाल
नहीं
होता ही नहीं। ये भी ऊपर का जो 141 है उसके अनुसंधान में ही प्रश्न चला है और उत्तर दिया है। अब 143 में तो ये मत करता चली थी, ये विवादास्पद बात यहाँ से हुई है। सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य, या ज्ञान कारण और श्रद्धा कार्य, श्रद्धा और ज्ञान दो गुण के दो परिणाम हैं। उसमें श्रद्धा कारण का कारण ज्ञान है या ज्ञान का कारण श्रद्धा है, इस पर चर्चा चले। तो यहाँ भूल हो गई है, उसको ऐसा कि श्रद्धा के कारण से ज्ञान होता है, उसको ये रचना पर पढ़ करके भूल हुई थी क्या? तो उन्होंने क्या सोच लिया, भूल कैसे होगी कि अभी तक तो हमने शास्त्र पढ़े और ज्ञान की चर्चा बहुत किया, शास्त्र में शास्त्र ज्ञान बढ़ाया, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ गया और द्रव्यलिंगी को भी 11 9 पूर्व का हो जाता है, तो उसको तो श्रद्धा नहीं होती है, तो उसमें आया है, उसने तो उसका दृष्टान दिया है, 11 वाले को भी श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए ज्ञान कारण नहीं होता, श्रद्धा से ज्ञान होता है, ज्ञान से श्रद्धा, ऐसा पकड़ लिया। ये कल्पना हुई है, अनुभव नहीं हुआ है क्या? अनुभव में दूसरी बात है, कल्पना में दूसरी बात होती है। ये तो विज्ञान है, अनुभव से ही पता चलता है कि क्या कैसे कार्य कारण का भी न्याय कैसे होता है, उसका लॉजिक कैसे होता है, वो उसको पता चलता है। देखिए प्रश्न, कि त्रिकाली में प्रसरने में ज्ञान कारण है या दृष्टि कारण है? अभी देखो यहाँ तो चर्चा तीसरी बात की चली है, और श्रद्धा ज्ञान की चर्चा कर ली। त्रिकाली में प्रसरने में, मैंने तन्मय होने में, मैंने एकाग्रता होने में ज्ञान कारण के दृष्टि कारण है, मैंने ध्यान में कौन कारण है? प्रश्न ज्ञान का है, चारित्र का कारण है, चारित्र का प्रश्न उठाया है,
उनमें ज्ञान होने के बाद का प्रश्न,
ये बात का प्रश्न है। जो मोक्ष मार्गी है उसको ध्यान होता है, लीनता होती है, उसमें उसका ज्ञान कारण है कि दृष्टि कारण है? तो मुख्य तौर से वहां दृष्टि कारण है, ये बात सही है। और सम्यक दर्शन होने में ज्ञान कारण है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद ध्यान होने में श्रद्धा कारण है, दृष्टि कारण है, ऐसी बात है। तो ये विज्ञान में कौन सा स्टेज पर कौन सा कारण कारण बनता है, वो अनुभव बिना तो पता चले नहीं, और अपनी धारणा से कहीं कल्पना कर लेवे तो उल्टा सुलटी बात हो जावे, ग्रह प्रख्यात हो जावे।
ऐसी जगह सत्पुरुष का संयोग जरूरी हो
गया। देखो क्या प्रश्न निकाला है, कि त्रिकाल में प्रसरण में ज्ञान कारण है कि दृष्टि कारण है? तो उत्तर दिया कि मुख्य तौर से तो ज्ञानी को दृष्टि ही कारण है। क्या कांश में लिखा, वहां मुमुक्षु की बात नहीं लेनी, इस उत्तर में ज्ञानी की बात लेनी, कि मुख्य तौर से तो ज्ञानी को दृष्टि ही कारण है। फिर ज्ञान को भी कहते हैं, कभी शास्त्र ने ज्ञान को कारण कहा है, ज्ञान की प्रधानता से चारित्र का कथन आवे तो ज्ञान को भी कारण कहे, लेकिन यथार्थत में तो मुख्य तौर से तो दृष्टि ही कारण है। इतना आता है कि मोक्ष मार्ग में दृष्टि के बल से, श्रद्धा के बल से ज्ञानी आगे बढ़ता जाता है, तो बल देने का ही कारण है, पुरुषार्थ वृद्धि होने का कारण दृष्टि का जो बार बार परिणमन है वो पुरुषार्थ को बढ़ा देता है। फिर ज्ञान को भी कहते हैं, क्योंकि दोनों साथ में ही है, तो कभी कोई ज्ञान से कहते हैं, कोई दृष्टि से कहते हैं, लेकिन मुख्यपणे देखो तो दोनों में मुख्यता दृष्टि की है, ज्ञान की नहीं है, क्योंकि दृष्टि सम्यक हो गई है, दृष्टि प्रसर जाती है तो ज्ञान भी हो ही जाता है, दोनों का प्रसरण हो जाता है, दृष्टि का भी प्रसरण हो जाता है, ज्ञान का भी प्रसार हो जाता है अपने स्वक्षेत्र में। ऐसे तो लिखो तो सम्यक दर्शन के काल में सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, प्रसंवेदन और स्वरूप स्थिरता का शुद्ध उपयोग, तो तीनों एक काल में है, एक समय का भी अंतर नहीं। और सम्यक पुरुषार्थ और शांति, पांचों गुण या अनंत गुणों का परिणाम एक समय में होता है। अब कारणकारी जो है वो एक साथ होने हैं, किसी के प्रधानता से किसी को कारणकारी में शास्त्र में कथन आता है। ये तो बात रही कथन की विविक्षा की, पुरुषार्थ जहां दिखाना है वहां पुरुषार्थ प्रधानता से बात आएगी, चारित्र वहां जहां दिखाना है वहां ध्यान की प्रधानता से बात आएगी, और श्रद्धांत की मुख्यता दिखानी हो तो श्रद्धा की प्रधानता से बात आएगी। तो ये तो कहने वाले का जहां जो अभिप्राय है वहां ऐसा कथन करने में कोई दोष नहीं है, सभी निर्दोष है, ज्ञानी मात्र निर्दोष है, किसी भी गुण की प्रधानता से कथन किया हो उसमें कोई दोष नहीं है। फिर जब लॉजिक के कारण कार्य की बात हो तो ये दूसरी चर्चा है, निरीक्षा करना वो दूसरी बात है और कारण कार्य का लॉजिक विज्ञान बताना वो दूसरी बात है, तो एक बात नहीं है। तो कहीं तो निरीक्षित बात हो और कहीं वैज्ञानिक बात हो, अगर दो का भेद नहीं छाते तो परस्पर विरुद्ध लगेगा, यहां तो ये ऐसा कहते हैं वहां तो ऐसा कहते हैं, ऐसा पता लगेगा। जैसे कुमकुंदाचार्य ने 50 से 55 गाथा में सभी परिणाम को पुद्गल का परिणाम कह दिया, 14 गुण स्थान को पुद्गल का परिणाम कह दिया, क्या
पुद्गल का परिणाम,
14 गुण स्थान में कौन सा बाकी रहा, अरियंत पद भी आ गया, हाँ और क्या कहा कि सब पुद्गल के परिणाम, और आगे जाकर के क्या कहा 384 अब चला ना दुर्गी के टेप में संगढ़ में, तो राग है उसका करने वाला आत्मा है, क्या क्या बोले
करने वाला आत्मा है,
राग आत्मा करता है, प्रकृति का कार्य नहीं है, उधर कहते हैं कि पुद्गल का कार्य है, इधर कहते हैं कि प्रकृति, एक ही शास्त्र में कैसे अर्थगतन करोगे, क्या अपने बात काटता है आचार्य महाराज, आचार्य महाराज अपनी बात से विरुद्ध कथन करता है, परिवार पर विरुद्ध वाणी हो सकती है क्या ज्ञानी की, तो वहां कौन सी भी विक्षा है यहाँ पर कौन सी भी विक्षा है, अगर नहीं समझे तो उनको एक भी बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए सत्पुरुष का योग की महिमा इसलिए है, ऐसे ऐसे विषयों में शास्त्र के ऐसे प्रकार के विषयों में बोली अच्छा स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन ना वो बात के लिए ना वो बात के लिए ना ये अभिप्राय है ना ये विविक्षा है ना कहने का वहाँ हेतु है कोई कोई ये बात करने का हेतु ऐसा करता हूँ। मैं चली थी दूसरी कुत्र गलत की चर्चा चली थी, दूसरी कुत्र में कहा है कि आत्मा ज्ञाता है और स्वद्रव्य है वो अनादि की भ्रांति है, और जिनागम का ये प्रतिपादन है, किसका प्रतिपादन है, छेद्रव का प्रतिपादन किसका है, जिनागम का है, तो आगम की बात कोई भ्रांति कहेंगे कोई ज्ञानी के नहीं कहेंगे। अच्छा राजमल जी खुद 252 से लेकर के आगे के कलश में ये कहेंगे कि कोई अपने ज्ञान में से निराकार को निकाल देने का प्रयास करता है वो मूंड है, पशु है, मिथ्या दृष्टि है, तो ऐसा कहेंगे आज तो अपने बात को काटेंगे, वहां कुछ है ऐसा बात नहीं है, वहां कहने का अभिप्राय दूसरा है, इधर कहने का अभिप्राय दूसरा है, कहीं भी एक दूसरे में विरुद्धता है ये बात है। ऐसा अविरोधपना निकालने पर जो उसको आता है उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, वरना उसको तो कोई बात बैठने वाली नहीं है, वो शंका उसकी जाएगी नहीं, निशंक होगा नहीं, और ये शंका में ये लुढ़कता रहेगा, जेने आपणे कहीए छीए शंका में गलका खातो रहे समाज। त्रिकाली है वो आत्मा है, चैतन्य शक्ति चित शक्ति, और त्रिकाली है तो आत्मा है, बाकी सब पर है। पर को या कुल कहो क्या, पर को जैसे 50वीं गाथा में क्या कहा नियम सार में, पर द्रव्यम पर भावम हेयम, तो पर द्रव्य कह दिया क्या, क्षाई पर्याय पर्याय है के द्रव्य है, केवल ज्ञान के पर्याय पर्याय है के द्रव्य है, तो पर्याय है तो द्रव्य क्यों कहा, द्रव्य नहीं कहा पर द्रव्य कहा, तो त्रिकाली क्या पूछा है, वहां द्रव्य पर्याय का विषय
नहीं है,
नहीं चलता द्रव्य पर्याय का वहां विषय नहीं चलता है, द्रव्यानुयोग का विषय वहां नहीं चलता है आगम का, ऐसे छह द्रव्य नहीं है ये भ्रांति है, वहां कोई स्वपर प्रकाशक शक्ति शक्ति का स्वभाव की चर्चा नहीं चल रही है, वहां ये कहने का अभिप्राय नहीं है, वहां तो वेद नायक शंकर दोष होता है, वेद के जानने के काल में एकत्व हो जाता है उसका निषेध करते हैं, ये बात है
आचार्य का उद्देश्य वो है,
हाँ उद्देश्य है, तो उद्देश्य को नहीं समझे, उद्देश्य की मर्यादा को नहीं समझे तो कोई बात कहां की कहां लगा देगा, उसमें तो परस्पर विरुद्धता हुए बिना रहेगी नहीं और अज्ञान मिटेगा नहीं। कर्म की अपेक्षा छे, साहित्य पर्याय में अपन कर्म क्षय की अपेक्षा छे एम कहे, और भगवान आत्मा को कोई अपेक्षा
नहीं है,
जाओ निरपेक्ष है, और स्वभाव में चौदह गुण स्थान का भेद ही नहीं है, गुण स्थान मर्यादा कोई भेद उसमें
नहीं है,
ऐसा कहना
पर्याय का भेद नहीं है,
पर्याय का भेद ही नहीं है, तो चौदह गुण स्थान पर्याय के भेद में जाता है, गुण का भेद नहीं है तो पर्याय का भेद कहा लेने के बाद, पर्याय का भेद तो बहुत स्थूल है, गुण का भेद तो सूक्ष्म है, वो भी नहीं है,
परम कृपालु श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।